खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
ओम शांति, गुड मॉर्निंग। फिर से हम सभी पांडव भवन के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। हम सभी एक बार दिल से आदरणीय हमारी डॉक्टर सविता दीदी का हाथ हिला करके स्वागत करेंगे। मधुबन महायज्ञ में बेहद की सेवा में निरत निरंतर ज्ञान गंगा बन करके ज्ञान की पिपासु आत्माओं को ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए निमित्त बनी भी हमारी डॉक्टर सविता बहन, आप सभी साकार मुरली के माध्यम से सुनते हो बाबा क्या कहता है, डबल डॉक्टर बना, हमको भी बनाता है डॉक्टर। सचमुच में हमारी डॉक्टर सविता बहन क्या है, फिजिकल जैसे दुनिया के हिसाब से भी डॉक्टर है, और बाबा ने आपको डबल डॉक्टर बनाया। और आपकी खास जरूरत कहाँ महसूस किया भगवान ने, वहाँ डॉक्टर बन करके कितना कमाएंगे, एक कमाएंगे, दो, पाँच, 10 लाख 20 लाख कमाएंगे, लेकिन भगवान ने कहा मैं तुम्हें पद्मा पद्म कमाई का अधिकारी बनाऊंगा। इसी संकल्प को लेकर के बाबा ने आपको निमित्त बनाया है। मैं समझती हूँ दीदी को सभी जानते होंगे ना, इंदौर जोन के हो ना डॉक्टर सविता बहन, तो दीदी तो आपके जोन के ही, हमें इतना तो पता है, लेकिन पिछले 40 वर्षों से मधुबन बाबा के बेहद के घर में रह करके बेहद की सेवाओं के लिए निमित्त बनी है। हमने हमेशा दीदी को बड़ों के अंग संग रहते हुए देखा। एक हमारे पास भी डॉक्टर बच्चा आया, मैं डॉक्टर बनूंगा। मैंने कहा क्यों डॉक्टर बनूंगा, दीदी ऐसे तो हमें दादियों दीदियों के पास जाने नहीं देते हैं नज़दीक, जब मैं डॉक्टर बनूंगा ना तो बिल्कुल दादी और दीदियों के संग रहने का मौका मिलेगा। तो सचमुच में हमारी डॉक्टर सविता बहन को देखा, हमारी दादियों के अंग संग रह करके बल स्वास्थ्य लाभ के लिए जरूरत पड़ती थी, तो एक ऐसा सुंदर मौका इन महान भाग्यशाली आत्माओं के अंग संग रहने का भाग्य आपको प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ अपने अपने आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति भी इतनी की है जो लाखों आत्माओं तक ज्ञान का संदेश देने के लिए निमित्त बनी है। ऐसे महान विभूति बहुत ही नम्रचित सरल स्वभाव के सबके साथ एडजस्ट होकर के चलने वाली डॉक्टर सविता बहन आज हम सबको अचल अडोल और एक रस स्थिति जो हमारा लास्ट मास का अव्यक्त इशारे से रिलेटेड था उसी बात को लेकर के, और हम कैसे तपस्या के माध्यम से भट्टी के माध्यम से और गहराई में जा करके कैसे अनुभव करें अचल अडोल और एक रस स्थिति, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे हमारी डॉक्टर सविता बहन। आप मनमोहिनी वन का भी विशेष वहाँ का संचालन करती हैं, तो वहाँ की जो भट्टियाँ क्लासेस सॉरी मानस सरोवर है ना, मानस सरोवर में जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, भट्टियाँ होती है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते, 2,000 लोग वहाँ पे आजकल आने लग गए। तो ऐसे बेहद की सेवाओं में निरत होकर बेहद की भावना हम सबको भी बेहद की ओर ले जाने के लिए आज हमें इस सब्जेक्ट पे विशेष स्पष्टीकरण देगी डॉक्टर सविता बहन।
ओम शांति, ओम शांति। कहते हैं कि योगी की स्थिति क्या है, योगी की सिद्धि क्या होती है। तो यही सिद्धि होती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कितने भी उतार चढ़ाव आए जीवन में, लेकिन वो सदा शांत, स्थिर और संतुलित रहता है ना, यही अचल अडोल रहता है, तभी हम कहेंगे कि हाँ हम योगी हैं। तो बाबा कहते हैं, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय हानि लाभ सुख दुख, यही है ना उतार चढ़ाव। उतार माना दुखी हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हानि हो जाती है, कोई भी है ना, कोई भी ऐसे विघ्न आ जाते हैं। और चढ़ाव माना सफल होते हैं ना, हमारी कोई प्रशंसा करता है, लाभ हो जाता है हमें, तो भी ये सब स्थितियां मन को विचलित करने वाली हैं। तो लेकिन जो योगी होता है वो कहता है, वो समझता है कि ये सब परिवर्तनशील है, ना सुख सदा रहने वाला है और ना ही दुख सदा रहने वाला है। जो आई है परिस्थिति या जो भी स्थिति है वो आज है और कल नहीं है, ना कि रहने वाली है सदा। सुख सदा रहता है या दुख सदा रहता है? नहीं रहता है ना। तो इसीलिए पता है कि ये सब परिवर्तनशील है। ड्रामा का ज्ञान है हमको, समय का ज्ञान है, और उस आधार पर हम अपने मन को स्थिर रख पाते हैं। तो सुख में, सफलता में, प्रशंसा में, अहंकार में नहीं आ जाते, और दुख में, असफलता में, हानि में बहुत हताश नहीं हो जाते। दुनिया वाले तो कहते हैं अभी अभी खुशी में नाच रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद देखो तो उल्टे सोए हुए हैं, तो ये क्या है, अभी अभी खुश अभी अभी दुखी। तो दिन में 10 मूड बदलते हैं, लेकिन योगी माना कौन सा मूड? हाँ जी, सदा एक रस, सदा एक रस स्थिति। तो कोई भी ऐसे नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। अज्ञानी लोगों से ज्यादा समस्याएं आती है, ज्ञानियों के जीवन में ज्यादा आती है, कम आती हैं? क्या कहेंगे, ज्यादा ही आती है ना, जब से ज्ञान में आते हैं। क्योंकि हम दुनिया से उल्टी दिशा में चलना शुरू हो गए, दुनिया के साथ चल रहे थे तो पता ही नहीं चलता था, लेकिन जब हमारी दिशा बदल गई, तो जैसे नाव अगर धार की दिशा में जा रही है, प्रवाह की दिशा में जा रही है, तो उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, लेकिन प्रवाह के उल्टी दिशा में जाएंगे तो डबल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमें भी अभी वो स्थिति हो जाती है कि अब हमें पहले से ज्यादा शक्ति चाहिए। वो शक्ति हमें मिलती है, बाबा हमारे साथ है तो बाबा हमें वो शक्ति देता है, तो हमें वो इतना मुश्किल नहीं लगता है ना। लेकिन स्थितियां जो हैं वो तो वो पेपर हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। और शुरू से यज्ञ में देखा, यज्ञ की भी जब स्थापना हुई तो स्थापना के समय से ही विघ्न शुरू हो गए। हाँ, पिकेटिंग हुई, बाबा को मम्मा को कोर्ट भी जाना पड़ा। हाँ, कितना यज्ञ के लिए ग्लानि हुई जो भी ये कार्य कर रहे थे, लेकिन भरोसा, बाबा पर निश्चय कि ये किसका कार्य है, परमात्मा का कार्य है और हमें विजयी होना ही है। वो बाबा कहता है निश्चय बुद्धि विजयंती, तो कभी भी हिले नहीं। बाद में भी यहाँ आने के बाद भी कोई परीक्षाएं नहीं आई, ऐसा तो नहीं। कराची में रहे, फिर उसके बाद पार्टीशन हुआ, यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ पर बेगरी पार्ट चला, लेकिन बाबा जैसे कहते हैं ना, हर बात में कल्याण है। तो फिर यहाँ आने के बाद जो बेगरी पार्ट चला, उसने निमित्त बनाया कि बाहर सेवाओं में हमारे जो भी दादियां हैं वो निकली, और ऐसे विश्व की अन्य आत्माओं का भी कल्याण हो, क्योंकि ये तो पूरे विश्व का कल्याण होना है ना, कोई थोड़ी आत्माओं का कल्याण होना है या थोड़ा परिवर्तन होना है, नहीं पूरे विश्व का ही परिवर्तन होना है। तो वो पार्ट निमित्त बना उन लोगों के विश्व कल्याणकारी बनने के लिए, विश्व सेवाधारी बनने के निमित्त बनने के लिए। लेकिन उन सब ने हमेशा अचल रह करके है ना, अपनी स्थिति को भी, जो भी परिस्थितियां आई, अपनी स्थिति को कभी हलचल में आने नहीं दिया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत आती रहती हैं। अब उतनी कहेंगे मुश्किल नहीं आती हैं जितना कि यज्ञ स्थापना के समय आई, या जो हमारी दादियों ने जो तपस्या की या जो त्याग उनको करना पड़ा, ऐसा है इतना भी हाँ, क्या कहेंगे? इतना हो तो शायद ज्ञान में भी ना चले, है ना। तो उतना तो कठिन समय हमारे लिए अब कभी भी आने वाला नहीं है। हमारे सामने थोड़ी थोड़ी हमारी व्यक्तिगत जो भी समस्याएं होती हैं वो होती हैं, या दूसरों के स्वभाव संस्कार के कारण जो आती हैं वो होती हैं, जो हमें हलचल में ला सकती हैं, या कुछ प्रकृति के कारण हो सकता है, व्यक्ति, परिस्थिति और प्रकृति, ये तीन जो हैं वो ज्यादा निमित्त बनते हैं। और या कभी कोई अनहोनी हो जाती है किसी के जीवन में, जो सोचा नहीं ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो ये सब हमारे को हलचल में ला सकते हैं। तो बाबा हमें कहता है तीन बिंदु याद रखो। अचल अडोल रहने का सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? तीन बिंदु कौन से? आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। तो आत्मा बिंदु माना मैं कौन हूं, सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, वो सीट, अपनी सीट पर सेट रहना। तो बाबा ने कितना ऊंचा स्थान दिया है हमें, सोमान जो दिए हैं वो, और आत्मा के तीनों कालों का ज्ञान है। जो भी हमारे स्वरूप हैं, बाबा ने हमें जो सोमान में पांचों स्वरूपों की स्मृति दिलाई, हम देवता थे, फिर हम ही पूज्य थे, आज हम ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, है ना। तो जो भी स्वरूप बाबा ने हमें स्मृति में दिलाए हैं, ये तीनों कालों का ज्ञान हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान माना सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सर्वशक्तिवान की शक्तियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं। फिर हम साक्षी स्थिति में स्थित हो सकते हैं, आत्मा का जो ज्ञान है वो हमें साक्षी बनाता है, और साक्षी होकर के हम स्वयं के भी पार्ट को और दूसरों के भी पार्ट को देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, त्रिकालदर्शी बना दिया ना बाबा ने, तो कलयुग है, कलयुग में आत्माएं तमोगुणी हैं, तो ये जो भी पार्ट बजा रही है वो माया के वश होकर के। अब डिस्टर्ब हम किससे होते हैं, कोई अच्छा हमारे साथ व्यवहार कर रहा है उससे हम थोड़ी डिस्टर्ब होते हैं। हम किससे डिस्टर्ब होते हैं, जो हमारे लिए कोई ना कोई विघ्न पैदा कर रहा है, कोई हमारी ग्लानी कर रहा है, कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है, ऐसे पार्ट प्ले करने वालों से हम थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। और ये कोई ना कोई हिसाब किताब तो हमारे जीवन में है ही ना, ऐसा तो होगा नहीं कि सब हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जन्म पुनर्जन्म में हम भी आए हैं, जन्म पुनर्जन्म में वो आत्माएं भी आई हैं। तो बाबा ने जैसे ही हमें ये समझ दे दी, हम तुरंत उस आत्मा के पार्ट को देख लेते हैं कि ये आत्मा ये पार्ट प्ले कर रही है, हिसाब किताब हमारा चुकतू हो रहा है। तो कर्ज चुकतू हो रहा है माना हम हल्के हो रहे हैं, और हमें सब खत्म करके ही अब घर वापस जाना है। अगर हिसाब किताब रहेगा तो सजा भोगनी पड़ेगी, सजा भोगनी पड़ेगी तो पद कम हो जाएगा, तो इससे तो अच्छा है ना सारा यहाँ ही हिसाब किताब खत्म हो जाए। तो हम और ही उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए साक्षी होंगे, तो हम उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना देते हुए ऐसे उसको पार करेंगे जैसे कि कुछ है ही नहीं। हो सकता है? अगर हम डिस्टर्ब होते हैं ना, कई तो होते हैं, कोई एक शब्द तो बोल दे जरा, इतनी फीलिंग आ जाएगी कि दो दिन चार दिन योग ही टूट जाता है, योग लगता ही नहीं, वही वही आत्मा घूमती रहती है, तो हम क्या कहेंगे? फिर हम त्रिकालदर्शी हैं? इसका मतलब जो बाबा ने हमें समझ दी, जो ज्ञान दिया, ज्ञान माना ही समझ ना, तो ज्ञान को यूज करना समय पर, वो ही हमें अचल अडोल बनाता है। अगर हमने ज्ञान को यूज नहीं किया तो फिर तो हम फेल ही होंगे। अगर हम अचल अडोल नहीं हैं, बाबा कई बार, क्योंकि पिछले पूरे मास ये अव्यक्त इशारे में चला, तो बाबा कहता है कि फिर हमारा जो पद है सतयुग में, वो राजाई पद भी हमें अचल अडोल नहीं मिलने वाला है, उसमें भी वो अंतर आ जाएगा। तो जितना हमारी स्थिति यहाँ वर्तमान में अचल अडोल रहती है, कोई भी व्यक्ति परिस्थिति में, उतना ही भविष्य प्राप्ति भी हमारी है। अचल अडोल रहना माना पास विद ऑनर होना, और अगर हम हलचल में आ गए तो फिर हमारे में, हमारे प्राप्ति में अंतर आ जाएगा, जो भी हमारा जमा हो रहा है उसमें। और हमारे रोज के ये पेपर होते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाई है तो पेपर भी होना ही है, तो पेपर कोई लास्ट में ही होना है, लास्ट में तो होना ही है, लेकिन ये जो हमारे रेगुलर भी हमारे जीवन में बातें आती रहती हैं, ये भी हमारे पेपर हैं, और ये हमें मजबूत बनाते रहते हैं। बाबा कहता है जैसे स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं तो उनके टर्म्स होते हैं ना, फाइनल एग्जाम नहीं होते सीधे, पहले क्या होता रहता है, हर महीने में होता रहेगा, एक दो होते रहेंगे टेस्ट, वो उनको फाइनल पेपर के लिए तैयार करते हैं। अगर सीधा ही फाइनल पेपर हो जाए तो आधे फेल हो जाएंगे, है ना, लेकिन वो टीचर्स उनको पहले से तैयार करते हैं ताकि फाइनल पेपर में उनको अच्छा रिजल्ट मिले। तो बाबा भी हमको तैयार करते हैं कि जब फाइनल हमारा समय आएगा, उस समय तक हम सचमुच, हमारी वो स्थिति बन जाए कि हम फाइनल पेपर को पास कर सकें। तो जो भी व्यक्ति हमारे आसपास संबंध संपर्क में, आत्माएं, व्यक्ति तो हम कहेंगे आत्माएं, जो भी हमारे संबंध संपर्क में है, अब वो किसी भी रूप में हमें हलचल में लाने वाली हैं, चाहे वो हमारे लिए विघ्न बनते, मानो सब ज्ञान में नहीं चलते, सब ज्ञान में नहीं चलते तो हमारी कई बातें उनको पसंद नहीं आती, हमारा विरोध करते रहते हैं, तो वो भी तो हमें हिलाते हैं ना। लेकिन यहाँ भी कि अगर हम उनके पार्ट को समझते हैं, वो अपनी जगह राइट हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो भी गलत नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी प्राप्ति क्या है, हम बाबा कौन है, तो इसीलिए वो ये विघ्न डालते हैं। इसीलिए बाबा, ब्रह्मा बाबा हमेशा क्या समझते थे, दादियां हमें सुनाती थी कि हमारा एक गीत बना हुआ था, दुनिया कहती हमको पागल और हम कहते दुनिया पागल, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और हम उनको क्या समझते हैं कि अज्ञान है उनको, ना कि उनको ये पता ही नहीं कि हमें क्या मिल रहा है, तो इसके कारण वो ये अपना जो भी कर रहे हैं, तो मतलब वो भी अपनी जगह सही हैं। तो हम कभी भी उनके प्रति नेगेटिव हो जाएं या उनके जैसे बन जाएं, अगर वो गुस्से में बात कर रहे हैं तो हम भी उनसे गुस्से में बात करके उनको जवाब देने लगे, तो अज्ञानी के साथ हम भी अज्ञानी बन गए ना। तो वो हमारी स्थिति नहीं है, हमारी स्थिति है सदा ही, कोई कैसी भी आत्मा है, चाहे अज्ञानी है चाहे वो ज्ञानी ही क्यों ना हो, ज्ञानी भी कई बार ऐसा पार्ट प्ले कर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी कभी विघन रूप नहीं बनते, वो भी बन जाते हैं, क्योंकि पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, तो ईर्ष्या भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं, भेदभाव भी करते हैं, या गुस्सा भी करते हैं, या जो भी कहो, ये सारी बातें, वैर विरोध वाली बातें भी सामने आती हैं। तो चाहे ज्ञानियों का संगठन है और चाहे हम अज्ञानियों के बीच में हैं, कोई भी आत्मा है, मेरी स्थिति सदा उनके प्रति कल्याण की हो, शुभ भावना की हो, रहम दिल की हो, स्नेह की हो, सहयोग की हो, तभी हम अचल रह सकते हैं। तो ये हमारा सूक्ष्म पुरुषार्थ है। और सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब करने वाली होती हैं वो आत्माएं ही होती हैं हमको। परिस्थितियों से भी ज्यादा हम किससे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं आसपास? आत्माओं से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, उनसे ही हम हलचल में आ रहे होते हैं, और वही हमारा योग भी डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो ये हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है, चेक एंड चेंज। आप हमेशा अपना चार्ट देखो, आज सारे दिन में कौन सी ऐसी आत्मा जो निमित्त बनी मुझे हलचल में लाने के, फिर जो भी हिसाब किताब है मेरा, वो तो हमारे समीप ही होती हैं, रोज ही दिखती हैं। ऐसी आत्माएं जो होती हैं वो साथी होती हैं, चाहे परिवार में हो चाहे ब्राह्मण परिवार में हो, है ना, तो उनसे तो रोज ही टकराना है ही है। तो रोज ही अगर हम ये पेपर देंगे और रोज ही फेल होंगे तो किसका चार्ट खराब हो रहा है? तो हमें उसका, बाबा ने जो समाधान बताया है उसे हमें यूज करते रहना है जब तक हम पूरी तरह से विजयी नहीं हो जाते कि वो आत्मा मेरे साथ होते हुए भी मेरी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं आ रहा, मेरी एक रस स्थिति है। और ही हम उनको सुख दे रहे हैं, और ही हम उनको स्नेह दे रहे हैं, वो हमसे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही फील करें। तो ये हो गया आत्मा का बिंदु। अगर आत्मा बिंदु है, माना हम त्रिकालदर्शी हैं, उसके भी तीनों कालों को समझते हैं, हम भी अपने तीनों कालों को समझते हैं, सोमान में रहते हैं और सोमान और सम्मान देते हैं, तो ये पेपर हमारे लिए पास हो जाएंगे, हम अचल अडोल रहेंगे। फिर दूसरा है शिव बाबा बिंदु, वो हमारे साथ हैं। शिव बाबा जो सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, बाबा मेरा साथी है, तो फिर कोई भी परिस्थितियां आ जाए जीवन में, जैसे कहा कैसे पार कर लिया सब यज्ञ में, इतना हलचल हुई, लेकिन निश्चय के आधार पर, बाबा में जो निश्चय था उस आधार पर सब पार होता गया और यज्ञ आगे बढ़ता गया, और आज पूरे विश्व में यज्ञ की सेवाएं हैं। तो फिर हमारे लिए भी, बाबा तो सबके लिए हैं, जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है हम बाबा को याद करते हैं और बाबा हमारे साथ हैं, और हम अपनी जो भी चिंता है, मानो कोई टेंशन है, कोई चिंता की बात है, कोई बोझ है, फिकर, जिसको बाबा कहता है आप तो बेफिकर बादशाह हो, तो हम किसको दे देते हैं अपना फिकर? बाबा हमारा फिकर लेने वाला बैठा है ना, तो हमें क्यों हलचल में आना है? तो दुनिया की जो भी बातें हमें फिकर में ले आती हैं, जैसे कहा हमारा बिजनेस है ऊपर नीचे हो रहा है, धन की बात होती है, धन की हानि हो जाती है, या परिवार में कोई बच्चों की चिंता करते हैं, ये बच्चों का क्या होगा, ये पता नहीं इन क्या अपना कैरियर बनाएंगे। कईयों को तो, माताओं को ये भी चिंता होती है, बच्चे कौन से संघ में जा रहे हैं, उनकी भावना होती है ये ज्ञान में चले, लेकिन वो ज्ञान में चलना तो छोड़ो, कई बार और ही हमारे लिए ही वो मुश्किल पैदा करते रहते हैं। तो आजकल जो हम देखते हैं परिस्थितियां दुनिया की भी हैं, अब संसार के समाचार भी जो हैं वो भी कितना हमें ऊपर नीचे करने वाले होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कई बार ऐसी चेंज होती रहती हैं, अब हम रहते तो इसी दुनिया में हैं, तो हमें इन सब का सामना करना ही है, लेकिन कौन हमारे साथ है? जैसे होता है ना, समस्याएं तो आएंगी लेकिन उनको हम कैसे पार करते हैं? तो बाबा साथ है, ज्ञान तो है ही, बाबा ने हमें वो समझ तो दी है, लेकिन बाबा साथ है तो बाबा की उन शक्तियों से हमारे लिए उनको पार करना मुश्किल नहीं है। और जैसे ही हम बाबा को याद करते हैं, परम धाम में अपने मन को ले जाते हैं, हमारी मन की स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, ऊंची स्थिति है, जैसे एरोप्लेन ऊंचा है तो उसके लिए नीचे की चीजें सब छोटी हो जाती हैं। कितना भी बड़ा शहर हो, एरोप्लेन के लिए क्या है, कोई बाधा है क्या? बड़े बड़े शहरों से वो उड़ के पार होता है, पहाड़ है, नदियां हैं, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। ऐसे ही हमारे लिए भी वो संसार की फिर ये बातें जैसे बहुत छोटी हो जाती हैं, वो हमें बड़ी नहीं लगती हैं। इसको बोलता है बाबा पहाड़ क्या हो जाता है, राई हो जाता है, और मन कमजोर है तो राई क्या हो जाता है, पहाड़। बात होती है जरा सी और हम बना लेते हैं उसको पहाड़ जितना। तो ये हमारे ऊपर है कि हम बड़ी बात को छोटा कर दें या छोटी बात को बड़ा कर दें। कईयों की आदत होती है इतना सोचते हैं उसको, जिसको बाबा कहते हैं क्यों क्या कि क्यों लगा देते हैं, यानी व्यर्थ संकल्पों की, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाँ मेरा ही भाग्य ऐसा है क्या, मेरे ऊपर ये विघ्न क्यों आते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों क्यों क्यों, जैसे ही हमने किया वो व्यर्थ संकल्पों की क्यों क्या करती है, परिस्थिति को बड़ा बना देती है। और अगर हम बिंदु लगा देते हैं फिर तीसरा बिंदु बाबा कहता है ड्रामा बिंदु, तो वो बिंदु हमने लगाया, फुल स्टॉप लगाया कि हर बात में कल्याण है। कौन सा बिंदु लगाना है, ड्रामा का बिंदु क्या है, जो भी हो रहा है बुरा भी हो रहा है क्या उसमें कल्याण है। सबसे ज्यादा तो प्रश्न यही आता है, एक प्रश्न आता है कि यही 5000 साल बाद रिपीट होगा, हाँ यही होगा वापस इतना सब होता है, मतलब जो भी हमारी लाइफ में ऊपर नीचे तो होता है ना, यही वापस आ जाएगा। ड्रामा चेंज होता तो कितना अच्छा होता, हम थोड़ा और अच्छा बना लेते इसको आगे के लिए, तो क्या कहेंगे। बाबा तो कहता है ना कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। तो ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, वो बाबा ने हमें बताया भविष्य के लिए, भविष्य हमारा कितना श्रेष्ठ है, कितना ऊंच है, हम ही देवता बने थे, हम ही फिर देवता बनने वाले हैं, है ना। तो ये बाबा ने हमें इसलिए ड्रामा का पति बताया, ये सोचने के लिए नहीं बताया कि कलयुग में हमारा जो पार्ट चल रहा है वो फिर रिपीट होगा। ये तो थोड़े समय के लिए, लास्ट में क्योंकि हमें सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं, इसलिए लास्ट में थोड़ा ये चलता है, बाकी तो 3/4 तो ड्रामा में सुख है ना। यही बाबा हमें बताते हैं कि अगर सारा ही ड्रामा ऐसा हो तो फिर तो इस खेल का कोई मतलब ही नहीं है, तो 3/4 तो हम फुल सुखी रहते हैं, और हमारे जैसा सुख तो इस ड्रामा में किसी को भी मिलता नहीं है। और ये ड्रामा में जो भी पार्ट हमें मिला है उस पार्ट में रह कर के ही हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है ना। फिर उसमें ये भी शिकायत नहीं कि मैं क्यों माता बन गई, मैं क्यों अधर कुमार अधर कुमारी, हम क्यों नहीं कुमार कुमारी बने संगम युग पर। कई माताओं को ये रहता है कि हम ही कुमारी होते तो समर्पित हो जाते, ब्रह्मा कुमारी बन करके हम सेवा करते। तो बाबा कहता है आप जिस पार्ट में हो आप सैंपल और एग्जाम्पल हो, क्योंकि ड्रामा में जो ये मशीनरी बनी हुई है उसमें हरेक की आवश्यकता है। कोई भी मशीनरी में अगर एक भी स्क्रू ढीला होता है तो क्या होता है, वो जितना परफेक्ट काम करना चाहिए उतना नहीं होता। तो ये भी तो विश्व कल्याण की मशीनरी है, और इसमें हरेक आत्मा का जो भी रोल है, चाहे वो प्रवृत्ति वाले हैं, कुमार हैं, कुमारी हैं, समर्पित बहने हैं, सबका रोल, सबकी आवश्यकता है। तो फिर उसमें रहकर हम संपन्न नहीं बन सकते, ऐसा तो बाबा ने कभी कहा ही नहीं। ब्रह्मा बाबा खुद ही प्रवृत्ति वाले थे, और इतनी बड़ी आयु में बाबा को ज्ञान मिला, 60 वर्ष की आयु में बाबा को ज्ञान मिला। नहीं तो कई बार हम समझते हैं अरे इतनी बड़ी आयु कैसे पुरुषार्थ करें, अब तो शरीर ही नहीं चलता है, अब तो ये दर्द वो दर्द, और बाबा ने कौन सी आयु में पुरुषार्थ किया, सीनियर सिटीजन बनने के बाद किया कि नहीं किया, और फिर संपन्न बने कि नहीं बने, और वो भी क्या बने, नंबर 1। तो कभी भी अपनी प्रकृति के अधीन नहीं हुए, और ये भी नहीं बाबा का तो बिजनेस और कितनी लंबी गृहस्थी थी, मतलब सब कुछ था ना। तो बाबा ने कैसे समेटने की शक्ति का यूज किया, एक धक से सब परिवर्तन। बाबा ने कहा, माना शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने किया। एक थॉट नहीं संशय का। उस समय तो बाबा को संशय आ सकता था ना, कोई कुछ स्पष्ट नहीं था। आज हमारे सामने तो कितना कुछ स्पष्ट है, बाबा के सामने तो कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी बाबा ने अटल निश्चय रखा शिव बाबा के ऊपर और पूरी संपत्ति सहित समर्पित हुए। ये भी नहीं भविष्य में क्या होगा, हम तो सोचते हैं अरे अगर हमने कर दिया तो पता नहीं भविष्य में, भविष्य के लिए कुछ तो सेफ्टी रखनी चाहिए। बाबा ने ये सोचा, पूरा ट्रस्ट बना करके बाबा ने, और वो भी अपने नाम नहीं किया, बहनों के नाम किया। और कुछ भी खर्चा भी होता था तो बाबा उनसे लेता था, बाबा खुद मालिक बन करके यूज नहीं करते थे। और अपने बेटों को भी नहीं दिया, बाबा के जो बेटे थे सब हम सुनते हैं ना ये। तो ये बाबा ने जो अपनी स्थिति बनाई, जो हम बात कर रहे थे कि ड्रामा जो है वो जहां भी ड्रामा में जिस भी रोल में हैं हम, वो हमारे लिए कल्याणकारी है। एक बार एक माता मेरे पास आई, हाँ कैसे कैसे अनहोनी होती है किसी की जिंदगी में। इतना बुरा सबके साथ नहीं होता, पर किसी के साथ हो जाता है। और कैसे फिर उसमें फिर कल्याण होता है अगर बाबा में हमारा पूरा निश्चय है। तो ये सच्ची घटना है। कई साल पहले मैं यहाँ पांडव भवन में ही रहती थी तब, तो एक माता बॉम्बे की थी, वो मेरे पास आई और उसने अपनी थोड़ी स्टोरी सुनाई। तो उसने कहा कि मैं ज्ञान में चली और मेरे पति ज्ञान में नहीं चले, तो निश्चित है ना आपस में फिर चलता है। और पवित्रता की धारणा, उसको तो बाबा पर बहुत निश्चय और बहुत लगन, तो ये तो बहुत विघ्न हो गया। तो उसने पति को छोड़ दिया, माना वही लड़ाई झगड़े में आपस में जो भी उनकी बात हुई तो पति से अलग हो गई, वो अलग रहने लगी। तो बच्चे, एक बच्चा 18 साल का था बेटा और बाकी दोनों बच्चे छोटे थे। तो बच्चे भी माँ के साथ आ गए और वो सिलाई जानती थी, तो उसने टेलरिंग करना शुरू किया। पति जो था वो कोई खास नहीं कमाता था और शराब वराब भी पीते हैं ना, तो ऐसी भी आदत थी उसके अंदर। तो इसने सिलाई करके अपना कमाई करना शुरू किया और जो बेटा था जो समझदार था वो भी काम करने लगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करने लगा, तो फिर वो भी कमा रहा था। तो सब ठीक ठाक चल रहा था, पर हुआ ये कि वो बाइक चला के जाता था, तो होते हैं ना यूथ में थोड़ा जोश होता है, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक आधे साल के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तो वो 2-3 दिन रहा और फिर उसने शरीर छोड़ दिया। तो एक जैसे कि दुर्घटना हो गई ना जीवन में, है ना, एक तो पहले परिवार टूट गया, फिर बेटे ने शरीर छोड़ दिया, अब दो बच्चे छोटे दूसरे जो थे इतने, मतलब छोटे ही थे, बहुत बहुत छोटे भी नहीं तो मतलब इतना बड़े भी नहीं। तो घर में दिवाली के दिन थे तो सफाई करते हैं बाद में, उसके बाद मतलब ये सारा होने के बाद, ये जब त्योहार था तो वो बेटी जो है वो स्टूल पे चढ़कर साफ कर रही थी, जाले वाले निकालते हैं ना, तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई। तो गिरी तो सिर के बल गिरी और उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, तो उसने भी शरीर छोड़ दिया। अब वो जो बेटा था ना, वो तीसरे नंबर का छोटा बेटा, वो इतना डर गया कि वो माँ को छोड़ के बाप के पास चला गया कि मेरा भी अब नंबर आ जाए। माना वो उसने सुनाया सारा और फिर कहा कि मैं अकेली हो गई क्योंकि वो चला गया। अब नेचुरली कोई इतना ज्ञानी तो थी नहीं, वो थोड़ा बहुत तो मन पर असर आता ही है ना, इतना सब एक साथ जिंदगी में होता जाए, कुछ ही सालों की, 3-4 साल के अंदर ही सब कुछ हो गया। तो सोचा क्या करूं, मन नहीं लगता है। तो उसने बहन को बोला कि मुझे थोड़े दिन मधुबन सेवा में भेज दो। बीच बीच में वो आती थी सेवा में, तो उसको अच्छा लगता था। तो बहन ने भी देखा भाई इसकी मन की स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी, इतना सब कुछ हो गया है तो मैं भेजती हूँ उसको, तो उसने उसको सेवा में भेजा। तो यहाँ सेवा में वो आई हुई थी उस समय, और थोड़ा सा उसको रोना भी जैसे आता है ना बीच बीच में बात करते करते, पर बाबा पर निश्चय था। अब ये तो समझ में आ रहा था कि ड्रामा में ये मेरा हिसाब किताब है, जो भी हुआ है ना। हर इंसान ज्ञानी होने के बाद कर्म की गति तो हम समझ ही जाते हैं, कई तो फिर बाबा को भी दोष देते हैं, दोनों ही तरह के होते हैं कि ये बाबा के ज्ञान में आने के बाद मेरे साथ ये सब हुआ, पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन वो माता में ये निश्चय तो था, तो उसने कहा कि देखो मेरा कैसा हिसाब किताब दीदी, और अब मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आता। मेरे को वापस बॉम्बे जाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि बॉम्बे जाकर अब मैं करूं क्या, अब मेरा कोई है नहीं, मैं तो अकेली हो गई हूं। तो मैंने कहा ठीक है आप यहीं सेवा करो, सेवाधारी होकर आए हो तो आप फ्री हो, अपनी दीदी से छुट्टी ले लो, यहीं सेवा करो। तो रही 6 महीना और उसका मन काफी ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो ज्ञान योग की पालना रेगुलर मिलती रहती है। फिर उसने मेरे को बोला कि मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं रह जाऊं, अब मेरा कोई है तो नहीं, घर तो अब रहा नहीं, तो मैं यहीं रह जाती हूँ तो मैं रह सकती हूँ। तो मैंने कहा भाई ये तो मैं नहीं कह सकती, आप जाकर के आप बड़ों से बात करो। तो मैंने बताया उसको, आप निर्वैर भाई जी को पूछो, दादी जी को पूछो, अगर वो आप समझेंगे तो हो सकता है, क्योंकि ऐसे मधुबन में कई थे मैंने देखा, एक युगल भी समर्पित थे यहाँ, तो एक 2-3 तो युगल भी समर्पित हुए थे। तो फिर उसने बात किया निर्वैर भाई जी को, तो निर्वैर भाई जी को समझ में आया। तो निर्वैर भाई ने कहा ठीक है आप यहाँ टेलरिंग डिपार्टमेंट में, आपको सिलाई आती है तो टेलरिंग डिपार्टमेंट में टेलर की तो हमेशा ही जरूरत रहती है, क्योंकि मधुबन निवासी तो बहुत हैं, सबके कपड़े सिलते हैं जब उनको मिलता है तो बुलाते हैं, बाहर से सेवा में बुलाते हैं, तो आप यहाँ सेवा करो। तो वो धीरे धीरे टेलरिंग डिपार्टमेंट में सेट हो गई, और वो अभी भी टेलरिंग डिपार्टमेंट में सेवा करती हैं। तो देखो कल्याण क्या हुआ, निर्बंधन हो गई और मधुबन निवासी बन गई। तो फिर देखने में तो कितना बुरा हुआ जिंदगी में, हाँ, लेकिन बाबा पर निश्चय रखा तो बाबा ने उसको भाग्य की कितनी बड़ी लिफ्ट दे दी, हाँ, कि वो मधुबन निवासी बनी। तो अब कभी भी उसको देखोगे उसका चेहरा इतना मुस्कुराता हुआ, अभी भी मिलती है वो, इतना मतलब उसकी स्थिति अच्छी है, और कभी वो याद नहीं रखती कि करती कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ। अब उसको ये याद रहता है बाबा ने मुझे कितना भाग्यवान बना दिया, कि जिसको लोग सपने में सोचते होंगे वो भगवान ने मुझे भाग्य दिया। तो ये कल्याण भविष्य के पर्दे में होता है, उस समय जब घटना हो रही होती है तब समझ में नहीं आता। हमेशा बाबा कहता है कि वो कहीं ना कहीं हमारा कल्याण है जरूर, और अगर ऐसे नहीं हुआ तो भी कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में होती है वो हमें मजबूत जरूर बनाती है। हमारी जो आंतरिक बाबा नहीं कहता है शक्तियां, हमें तब पता चलती हैं जब ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आती है, कि कहाँ तक हमारे अंदर वो सहन करने की शक्ति है, कहाँ तक हमारे अंदर वो समेटने की शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है, धैर्य की शक्ति है, ये सब शक्तियां, शांति की शक्ति है, कितने तक है वो तब हमें पता चलता है जब ऐसी मुश्किल स्थितियां पैदा होती हैं। तो कल्याण मानो किसी के पति ने शरीर छोड़ दिया, ऐसा भी हो जाता है आजकल तो, अचानक अकाले मृत्यु होती है, कोरोना में बहुत हुआ ऐसा, अचानक अचानक लोग चले गए, हमारे साथ ही हुआ। हमारे माता पिता सेकंड वेव तो बहुत वो थी ना, बहुत खराब थी भारत के अंदर जब कोविड की सेकंड वेव आई, तो हमारे दोनों ही पेरेंट्स को क्या पूरी फैमिली को ही कोविड हो गया, लौकिक फैमिली की बात कर रहे हम, तो यहाँ थे मधुबन में, तो पता तो रहता ही है सारा ना, मैं आजकल तो तुरंत समाचार मिल जाता है। और उन दोनों को ही उम्र थी तो कई बीमारियां थी, और निश्चित है ना कोविड में यही रिस्क था कि जो ज्यादा उम्र वाले हैं जिनको बहुत बीमारियां हैं उनके लिए, क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है तो बाकी तो सब ठीक हो गए, लेकिन वो दोनों सीरियस हुए तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और उन दिनों हॉस्पिटल में ना ऑक्सीजन मिलती थी ना, मतलब पूरा इतने पेशेंट थे कि वो किसी पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाते थे। तो पहले माँ ने शरीर छोड़ा, फिर उसके बाद पिताजी ने, दो तीन दिन के बाद पिताजी ने, एक्चुअली आज 3 जून है ना, आज पिताजी की पुण्यतिथि भी है, आज के दिन ही उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो अभी मुझे ध्यान आया, तो उन्होंने शरीर छोड़ा और जो भाई था, मतलब जिनके साथ वो रह रहे थे, उसको भी बहुत सीवियर हो गया था कोविड। वो भी हॉस्पिटल में एडमिट होके ठीक होके घर तो आ गया था, लेकिन इस पोजीशन में नहीं था कि वो सारा कुछ कर पाए। पूरी फैमिली को ही हुआ था ना, तो सारे वीक, कोविड के बाद तो एकदम वीक हो जाते हैं। मतलब ये स्थिति थी कि मुझे जाना ही पड़ेगा, और उस समय ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं था, ट्रेन बंद थी, एरोप्लेन तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो कब से ही बंद थे। तो मतलब बाय रोड गए मैं, मतलब एक बहन को साथ में लेकर के फिर मैं गई गुड़गांव, दिल्ली साइड में वो रहते थे, तो गई। और पिताजी, अभी मैं पहुंच गई थी वहां 1 जून को, आज 3 जून है ना, 3 जून को उन्होंने शरीर छोड़ा। तो मैं हॉस्पिटल गई और उनको हम वहां से डिस्चार्ज करा के, डॉक्टर ने कहा अब हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बहुत ही सीरियस कंडीशन में थे। हालांकि कोविड नेगेटिव हो गए थे, लेकिन जो उसके साइड इफेक्ट थे वो उसके कारण, तो बोला आप ले जाओ अब जब तक चले, ऐसे करके उन्होंने छुट्टी दे दी। तो हम घर में लेकर आए, पर एक दिन वो घर में रहे मुश्किल से, और उसी रात को फिर सीरियस हो गए, फिर हम लेकर के गए, उन्होंने वेंटिलेटर पर डाला और फिर उन्होंने शरीर छोड़ा। और माँ तो पहले ही जा चुकी थी 2-3 दिन पहले ही, तो वो गवर्नमेंट वाले ही उस समय अंतिम संस्कार करते थे, वो किसी को भी नहीं हाथ लगाने देते थे, किसी को आने भी नहीं देते थे, मतलब ऐसा चल रहा था माहौल उस समय। तो माँ का ऐसे हुआ, लेकिन पिताजी के समय में मैं पहुँच गई थी, और मैं भी, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, तो फिर उन्होंने कंसिडर किया और हमको, और वैसे भी वो कोविड नेगेटिव हो गए थे, तो फिर वो हमारे ही हाथ में था। मतलब तो मैं उस समय अपने आप को देख रही थी कि मेरी स्थिति क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें जब अचानक होती हैं, तो फिर अगर हम, हमारा वो ज्ञान युक्त स्थिति नहीं है तो उसका असर आता है, पर नहीं मेरे ऊपर आया। और दोनों का ही लगभग एक साथ सब कुछ, मैं 15 दिन रही वहां, और सब विधियां तो हमें करनी ही होती हैं, तो वो करते हुए भी कभी मुझे रोना आया हो, माना अंदर से कोई दुख आ गया हो, है ना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और हर चीज को मैंने उनके साथ, भाई के साथ बहुत अच्छी तरह से निभाया और पूरा उसको करके, और वो खुद अच्छा फील करने लगे जब उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब हम ठीक हैं और हम कर पाएंगे। तब बीमारी की ही उसमें सिचुएशन में थे, तब फिर मैं घर से वापस आई मधुबन। तो ये ज्ञान की स्थिति हमें ऐसे मदद करती है, और वो लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। बाबा कहते हैं ना, बहुत काल का हमारा पुरुषार्थ है तब हमें समय पर वो मदद मिलती है, नहीं तो कईयों को हम देखते हैं, है ना, जहां भी हमारा मोह होता है, वो रगें अभी तक हमारी अगर टूटी नहीं है, जो भी हमारे क्लोज रिलेशंस होते हैं उनमें अगर अचानक किसी का ऐसे हो जाता है तो हमें दुख ना हो या हम रोए नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो बाबा के बच्चे इस बात को, मतलब जिन्होंने बहुत गहराई से उस चीज को धारण किया है, अभी जैसे एक मिसाल हमने और भी सुना था कि एक सिद्धार्थ शुक्ला जो थे एक्टर, है ना, उनकी माता जी, वो वायरल हुआ था पूरा क्योंकि वो फेमस एक्टर थे और अचानक हार्ट अटैक से उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उनकी माँ ज्ञानी थी और इसीलिए वो बिल्कुल शांति से उसने सब विधि की उनकी, वो जरा भी रोई नहीं। नहीं तो जवान बेटा किसी का चला जाए तो उसकी माँ का क्या हाल होता है ना। तो मतलब उनको दिखाई दिया मीडिया वालों को, और फिर उनको पता चला कि ये ब्रह्मा कुमारी उसमें जाती है और इसीलिए इतनी स्टेबल है कि इतना बेटा जाने के बाद भी ये रो नहीं रही है। तो वो स्थिति के कारण पूरा उनका कि माँ की जो है वो स्टेज ब्रह्मा कुमारी इसमें जाने के कारण, उस ज्ञान के कारण जो है वो, तो वो सेवा करती है। अगर हमारी वो स्थिति ऐसी परिस्थितियों में भी अचल रहती है तो वो सेवा हो जाती है। और फिर मानो हमारी खुद के शरीर की बात, बीमारी आ जाती है कोई, बहुत हलचल में कोई आते हैं, जब कोई असाध्य बीमारी हो जाती है, पता चल गया कैंसर हो गया या कोई भी हार्ट की ऐसी बीमारी हो गई, या मतलब ज्यादातर कुछ इस तरह की बीमारियां जिसमें कि मृत्यु निश्चित है ना, पता होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फिर शरीर से मोह होता है ना, तो शरीर से मोह होने के कारण भय, और भय के कारण बीमारी का ही चिंतन, बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं, और जब बीमारी कॉन्शियस होते हैं तो अचल अडोल है। तो यहां भी प्रकृति चीत बन बाबा ने हमें बनाया, तो अपने शरीर को भी, इसीलिए कहा आत्मा का बिंदु लगाया माना, हम अपने शरीर को भी, देह से भी तो न्यारी है ना आत्मा, तो शरीर को भी साक्षी होकर के इन कर्मेंद्रियों से मैं अपना हिसाब किताब चुकतु कर रही हूं। ये प्रकृति से बना हुआ शरीर है, तो प्रकृति पर मुझे विजय पानी, जो मैंने कहा दादियों को हमने देखा, ऐसे नहीं है कि हमारे महारथी कोई बीमार नहीं हुए, या मम्मा का भी हम सुनते हैं, लेकिन कभी भी बीमारी का असर उनकी स्थिति पर नहीं आया। पता है कि शरीर का हिसाब किताब अपना है, और हम जितना खुशी खुशी उस हिसाब किताब को चुकतु करेंगे, चलो जाना भी तो सबको ही है ना, कोई अमर तो है नहीं, आज जाना है या 10 साल बाद जाना है, जो भी है, जैसे मम्मा तो कम आयु में ही चले गए, पर ऐसा थोड़ी संपूर्ण नहीं बने, लक्ष्मी बनने वाली है ना, वो भी तो भविष्य में, आज हमारी सब दादियां चले गए तो क्या संपूर्ण बनकर नहीं गए, है ना, तो हरेक अपने अपने समय पर संपूर्ण बनकर गए, तो लेकिन बीमारी ने उनकी स्थिति को हलचल में नहीं लाया। दादी जानकी को हमने देखा, वो तो 104 साल की आयु तक दादी जी रहे, हमारी सबसे लंबी आयु मैं समझती हूँ दादी जी ने रही, तो कैसे वो अपने मनोबल से अपने शरीर को चलाते थे, ऐसे नहीं उनको बीमारियां नहीं थी, हम तो सब दादियों के समीप रहे हैं, लेकिन कभी भी सेवा में दादी ने अपने शरीर को विघ्न रूप बनने नहीं दिया। बड़ी दादी जी को भी हमने देखा, तो कभी भी ये प्रकृति का प्रभाव मेरे मन की स्थिति पर ना हो। बाबा कहते हैं आत्मा अगर स्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ है ना, शरीर अस्वस्थ है, शरीर में कोई बीमारी आई है, तो अगर आत्मा स्वस्थ है तो शरीर का हिसाब किताब भी सूली से कांटा हो जाता है, वो अनुभव नहीं होता, हमको दर्द फील ही नहीं होता। जितना हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं, विदेही स्थिति में रहते हैं, यानी सोल कॉन्शियस जिसको हम कहते हैं, रूहानी कॉन्शियसनेस बाबा कहता है इसको, उतना ही शरीर से डिटैच होने के कारण उस कष्ट से हम फ्री रहते हैं, और बाबा की दुआएं हमें मिलती रहती हैं। दवा तो हम करते ही हैं, जो भी जिसको दवा लगती है वो हर बीमारी जो भी किसी को होती है उसका इलाज करते हैं ना, बाबा मना थोड़ी करता है कि हमें इलाज नहीं करना है, या राजयोग से हम पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, ये तो तमो प्रधान तत्व हैं, तो तत्वों के लिए जो आवश्यकता है वो तो देना ही पड़ता है हमें अपने शरीर को, लेकिन जो दुआएं हैं बाबा की, वो दुआएं हमें क्या करती हैं, उस कर्म योग की स्थिति से, उस बीमारी के कष्ट से मुक्त रखती हैं, और कई बार बीमारी से हम ठीक भी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे मिसाल भी, अभी तो टाइम नहीं है इसलिए मैं मिसाल नहीं देती, मैं जानती हूँ कि कैसे असाध्य बीमारियों से बीके भाई बहने ही अपने, कि जो डॉक्टर बिल्कुल जवाब दे देता है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, वो उनको आज 25-25 साल हो गए, और वो डॉक्टर को आश्चर्य होता है, अच्छा आप अभी तक भी हो, ऐसा चौथी स्टेज का कैंसर पार करके आप 25 साल हो गए, तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे भी विजय प्राप्त की हैं, तो है तो मन की स्थिति पर, है ना, इसीलिए कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो ऐसे मनोबल से बाबा के योग की शक्ति से विजय प्राप्त कर ली, तो हम कोई भी परिस्थिति में आएंगी, वो पेपर तो हमारे होने ही हैं जो हमें हलचल में लाने वाले होंगे, लेकिन उसमें भी हम अचल रहेंगे ज्ञान की शक्ति से, योग की शक्ति से, ड्रामा के नॉलेज से। इसीलिए बाबा कहता है वाह वाह के गीत गाओ, कैसी कैसी भी स्थिति हो, वहाँ ड्रामा वाह, वहाँ मेरा भाग्य वाह, और वहाँ बाबा वाह, बुरा भी हो रहा है तो भी वाह वाह हो सकता है, हो सकता है, तब तब अचल अडोल रहेंगे। तो जैसे वो एक शेर ये आते हैं ना, शेर कहते हैं, तो कहते हैं कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। तो ये कला हमें आ जाती है तो हम किसी भी स्थिति में अचल रह सकते हैं, और अचल रहे माना पास विद ऑनर, और हलचल में आ गए माना अब कहने की जरूरत नहीं। ओम शांति।
सविता बहन जी का बहुत सुंदर दादी जी के अंग संग के अनुभव, सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाया दीदी ने, कैसे अचल अडोल स्थिति दादियों की रही जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया, उस अनुभव को हमारे बीच में शेयर किया। फिर से आपका धन्यवाद।